जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय हो
कुंज
बिहारी जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी नेताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिलिटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिलिटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिलिटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले। अच्छा भगवद गीता सब लोग ले सकते हैं?
हाँ जी
दे दीजिए भगवद गीता मेरे पीछे बोलिए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारु अध्याय एक। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 28 पृष्ठ संख्या 42 सब लोग निकालिए। अभी क्या देर लग रही सबको? पृष्ठ संख्या 42 42 सबको नहीं मिला भी? मिला? अभी कुछ लोगों को नहीं मिला। देर लग रही? आपने क्या निकाला? कितना पेज? कितना निकाला? नहीं, 42 कहाँ है? 42 है, कितना है? ठीक से देखो, 42 समझोगे या 42 समझोगे? क्या समझोगे? कितनी देर लगती है? मंदा समंद मतयो कलयुग में कलयुग निकल गया, सबको मिल गया पेज नंबर 42। अभी कुछ लोगों ने अभी खोला ही नहीं है, किताब नहीं खोली। मेरे पीछे बोलिए, अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। बोलिए।
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयोत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
देवियों, देवियों में से कोई बोले? बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा दृष्ट्वा देखकर एवं इन सारे स्वजनम संबंधियों को कृष्ण हे कृष्ण युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले समुपस्थितम उपस्थित सीदन्ति कांप रहे हैं ममो मेरे गात्राणि शरीर के अंग मुखम मुह च भी परिशुष्यति। सूख रहा है, क्या सूख रहा है? मुंह सूख रहा है, इसलिए मैं पानी पी रहा हूं। देखिए, जल मैंने मांगा था पहले, नहीं आया। उसी समय जब मुख सूख रहा की बात आई तब मुझे मौका मिला पानी पीने का। अनुवाद मेरे पीछे बोले, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो यहाँ धागा लगा करके, अच्छा धागा आप लोगों का लगा है क्या, कुछ पहले से निशान धागे का बना हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ धागा लगा करके और आप लोग भूमिका में पहला पेज निकालिए। सबने निकाल लिया भूमिका में पहला पेज, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस, ज्ञान नहीं, मेरे साथ मेरे साथ। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक के शब्दों को समझेंगे। सब ने निकाल लिया, श्लोक के शब्दों को समझेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, यहाँ पर जो है श्लोक में क्या है, अर्जुन ने कहा है? और श्लोक संख्या कितना है? बोलो बोलो, हाँ 28। श्लोक संख्या 28 है और यहाँ पर अर्जुन ने कहा, ठीक है। अब ये श्लोक संख्या 28 से लगातार अर्जुन बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कहाँ तक देखिए। श्लोक संख्या कितनी, कहाँ तक अर्जुन ने बोला है देखिए, पेज पलटिए। अर्जुन ने कहाँ तक बोला है, पैंतालीस तक। अच्छा आप बताइए, 45 तक कहा, 28 से 45 तक कहा अर्जुन ने, कितने श्लोक हुए? 17, किसने 16 और 18 और और वो 18 हुए ना, 28 से 45 है ना, तो 45 में 27 घटाओ है ना, 18 हुए। अब देखिए 18 ये श्लोक अर्जुन के 18 हैं, हैं अर्जुन के श्लोक 18 हैं, कुछ विशेष महत्व है ना अर्जुन ने, हाँ 18 अध्याय हैं है ना। तो अर्जुन ने जो है अपना जो विषाद है, जो अपना चिंता, अपना जो शोक जो प्रकट किया है, वो 18 श्लोकों में प्रकट किया है, वो गीता के 18 अध्याय हैं ना। तो जो है मतलब विशेष बात है ना यहाँ पर। अच्छा अब हम सुनेंगे श्लोक के शब्दों को समझेंगे। अर्जुन क्या कह रहे हैं, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण। दृष्ट्वा का मतलब क्या है, देख करके, इमं स्वजनम इन स्वजनों को देख करके। इसके बाद क्या शब्द है अर्जुन का, इसके बाद अर्जुन का शब्द क्या है, कृष्ण। अब देखिए अर्जुन ने कृष्ण के नाम का प्रयोग किया, कृष्ण के नाम का प्रयोग किया अर्जुन ने, क्यों, क्योंकि कोई ऐसी अनिष्ट बात अगर हो जो कि बड़ी चिंता या बड़ी शोक की बात हो, तो अर्जुन ने उसको कहने के पहले कृष्ण का नाम लिया है ना। तो ये कृष्ण जो है, ये शब्द है, ये कृष्ण शब्द जो है मतलब अपने मुंह से हमेशा निकलना चाहिए। कोई चिंता की स्थिति हो तो मुख से क्या निकलना चाहिए, कृष्ण, कृष्ण। तो हमेशा कोई भी कष्ट की स्थिति हो है ना, तो अर्जुन ने कहा कि इन स्वजनों को देख करके कृष्ण। हाँ अब क्या कुछ बहुत ही जो ऐसे कहेंगे अप्रिय बात बोलने के पहले, वो क्या है, युत्सुम युद्ध करने की, स्वजन और युद्ध करें है ना, तो ये कितने अप्रिय बात है। तो अप्रिय बात को बोलने के पहले आपको पहले क्या बोलना चाहिए, कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण बहुत प्रिय है, ये जो है सबसे अधिक प्रिय है नाम है कृष्ण, आकर्षक है ना। तो ये जो है विधि है, आप कोई भी बात बोलते हैं है ना, विशेष रूप से अप्रिय बात है, कोई बहुत ही चिंताजनक बात हो, बहुत ही अशुभ समाचार हो है, तो क्या बोलना चाहिए, कृष्ण, ठीक है, क्योंकि ये बहुत शुभ है। तो उसको जो है मतलब उसके प्रभाव को दूर करने के लिए आपको क्या बोलना चाहिए, कृष्ण। जैसे कि मान लीजिए कि भोजन में बहुत मिर्चा हो, भोजन में अगर बहुत मिर्चा हो, अब खाना ही पड़े, तो क्या करना चाहिए, घी मिला दो उसमें, तो फिर जो है तो वो खाया जा सकता है, और घी मिला दोगे तो खाया जा सकता है ना। अगर बहुत जो है मतलब ऐसी चीज हो तो उसके प्रभाव को जो दूर करने के लिए उसके उल्टी प्रभाव की चीज जो है मतलब बोलना चाहिए। तो ये बहुत अशुभ या बहुत अमंगलकारी, बहुत अनिष्ट समाचार है, अप्रिय समाचार है, तो सबसे अधिक जो मंगलकारी, सबसे अधिक जो शुभ है, सबसे अधिक प्रिय है, वो कृष्ण का नाम हमेशा बोलना चाहिए है ना। तो इसकी व्याख्या हमने जो है श्लोक संख्या 40 में की है, 40 में भी अर्जुन ने कृष्ण का नाम बोला है। हाँ, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्री, इसमें हमने ज्यादा चर्चा की है, जो श्री भगवान ने कहा पुस्तक में, यहाँ पर ज्यादा चर्चा की हमने कृष्ण नाम का जो प्रयोग किया है ना। तो अभी तो आप इसी श्लोक पर आइए, इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। अर्जुन ने क्या कहा कि इन सज्जनों को देख करके हे कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा करने वाले हैं, और इससे भी ज्यादा अप्रिय बात क्या है कि समुपस्थितम उपस्थित भी हो गए हैं, युद्ध की इच्छा करे है ना, तो ये तो गलत बात है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत बात क्या है कि सामने आ गए हैं, और भी ज्यादा अप्रिय बात है। तो हे कृष्ण है ना, मतलब ऐसी स्थिति में है अर्जुन की दुविधा क्या है, अर्जुन की दुविधा क्या है, क्योंकि उनका तो युद्ध करने का स्वभाव है, युद्ध तो उनको बहुत प्रिय है, तो युद्ध करने का अवसर मिल रहा है तो बड़ा अच्छा अवसर है, लेकिन साथ साथ जो है वो मर्यादा नहीं भंग करना चाहते, कुल की मर्यादा, अपने स्वजनों के प्रति अपना जो व्यवहार है उसको खराब नहीं करना चाहते, तो इसलिए बहुत बड़ी दुविधा आ गई। इसलिए क्या बोले, कृष्ण है ना। तो कहीं पर जो है अगर ऐसी दुविधा आ जाए तो क्या बोलना है, कृष्ण कृष्ण बोलना है ना, कृष्ण है ना। दृष्टे मम सुजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा भी कर रहे हैं और सामने आ भी गए, समुपस्थितम है ना। फिर क्या हुआ, सीदंती मम गात्राणी, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, कांप रहे हैं। मुखम चा परिशोषति, और मेरा मुख परिशोषति, अत्यंत सूख रहा है, बहुत सूख रहा है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद की तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिल प्रभुपाद की, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है ना। तो प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में जो बात कह रहे हैं वो तो कुछ समझ नहीं आई कि श्लोक में अर्जुन ने ये बात कही और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बात बोल रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है ना। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो इन ईश्वरीय गुणों से भिन्न हो जाता है। अब कौन से वो सद्गुण या ईश्वरीय गुण की बात प्रभुपाद कर रहे हैं, कुछ अंदाजा लग रहा है, अगर आगे ना पढ़े तो करुणा। हाँ, तो ये जो है प्रभुपाद ये चर्चा कर रहे हैं, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः सुजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए, करुणा से अभिभूत हो गए अर्जुन है ना। तो ये क्या है, सद्गुण है। वे लोग जो है लोभ से अभिभूत हैं, वे जो लोभ के कारण अधर्म कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर लोभ नहीं है, उन्होंने इनको राज्य से निकाल दिया, अन्यायपूर्वक इनका राज्य छीन लिया, अन्यायपूर्वक इनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, अन्यायपूर्वक कितने कितने उन्होंने जो है व्यवहार किए, अन्याय किए, लेकिन तो भी अर्जुन को जो है अपने सुजनों के प्रति विरोध करने से डर लग रहा है। तो ये क्या है, ये सद्गुण है, ये सद्गुण है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जिन्होंने कौन, सुजन, वही जो सुजन है कौरव है ना, तो उन लोगों ने तो परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया है, लेकिन तो भी अर्जुन को जो है मतलब बहुत वो लग रहा है, संकोच लग रहा है। क्या अर्जुन डर रहे हैं युद्ध से, इसलिए नहीं, अर्जुन की शक्ति के सामने है ये तिनके भी नहीं है, ये तिनके भी नहीं है अर्जुन के सामने ये लोग है ना। तो अर्जुन को इन पर दया आ रही है कि हमारे सज्जन हैं और ये जो है मारे जाएंगे, इसलिए जो है ना, तो ये लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो तुरंत ही जो है करेगा, प्रहार करेगा, तुरंत ही करेगा। अर्जुन को जो है थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। आगे प्रबल हैं, जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था वे उनके प्रति प्रारंभ से दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वे उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे, है ना। तो ये है मतलब अगर मेरे द्वारा ये जो है अगर मुझसे युद्ध करेंगे तो ये निश्चित रूप से मारे जाएंगे, बस नहीं सकते है ना, अगर मैं युद्ध करूंगा तो निश्चित रूप से मारे जाएंगे, इसलिए अर्जुन जो है चिंता कर रहे हैं। आगे, और जब वे इस प्रकार सोच रहे थे तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया, उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वे दयावश रुदन भी कर रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, है ना। तो क्या है, अर्जुन की दुर्बलता नहीं है, हृदय की कोमलता है। फिर ये हृदय की दुर्बलता बन गई, वही हृदय की जो कोमलता है ये ऐसे अवसर पर हृदय की दुर्बलता बन गई, क्योंकि वे नहीं मानेंगे कोमलता, है कि नहीं। क्योंकि दुष्ट लोग जो है अपनी तरह दूसरों को दुष्ट समझते हैं, तो वो दुष्ट है तो भी नहीं समझेंगे कि हमारे ऊपर दया कर रहे हैं। वो क्या सोचेंगे, हमारी शक्ति से अर्जुन घबरा गए, है ना। वो कोमलता नहीं मानेंगे, वो दुर्बलता मानेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये हृदय की दुर्बलता छोड़ो, युद्ध करो, है, क्योंकि तुम्हारे हृदय की कोमलता को वे नहीं समझेंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंजना सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास बहुत योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण ये है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और तुरंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवत 5:18-12। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा, मैंने लिखा है, तो इसमें तो बहुत सी बातें हैं, तो इस सबकी चर्चा तो नहीं हो सकती, तो थोड़ा हम जो है चर्चा करेंगे क्योंकि समय बहुत सीमित है। तो पहली बात तो ये है कि कृष्ण यहाँ पर, कृष्ण शब्द की जो है हमने व्याख्या की है, अर्जुन यहाँ पर कृष्ण के नाम का प्रयोग किया है। श्रील प्रभुपाद बतलाते थे यदि ईश्वर का कोई मूल नाम है तो वो कृष्ण ही है, प्रभुपाद कहते हैं, है ना। मूल नाम जिसको कहते हैं नाम ना मुख्य धर्म नाम है कृष्णाख्यम में परंतप, जितने भी नाम हैं है? उनमें मुख्यतर नाम क्या है, कृष्णाख्यम में परंतप, है ना। तो ये बताया गया है। और कृष्ण की व्युत्पत्ति किस प्रकार है, कर्षति इति कृष्णः, जो व्यक्ति सभी को आकर्षित करे वो कृष्ण है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी प्रकार कृष्ण सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी प्रकार कृष्ण सभी जीवों को आकर्षित करते हैं, लेकिन सभी जीव आकर्षित तो नहीं होते कृष्ण से, अब इसका क्या कारण है? चुंबक में जंग लग गया, यानी कृष्ण में कुछ कमी आ गई है, चुंबक कृष्ण चुंबक है, लोहे शुद्ध नहीं है, शुद्ध लोहा नहीं है, चुंबक में चुंबक में कोई कमी नहीं आई, कृष्ण तो चुंबक है और लोहे को आकर्षित करते हैं, लेकिन लोहे में कुछ कमी आ गई है ना, हाँ लोहे में जंग लग गया। तो हम जो जीव हैं इस भौतिक प्रकृति के आवरण में जो है वो हो गए हैं, जंग लगे लोहे की तरह हो। जैसे हम शुद्ध होते हैं तो कृष्ण नाम हमें पहले शुद्ध करेगा, पहले शुद्ध करेगा तब आकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो कृष्ण नाम का जो चुंबक है एक ऐसी वस्तु है जो लोहे को पहले उसकी जंग को छुड़ाएगा, इसके बाद फिर लोहे को आकर्षित करेगा। दोनों काम, चुंबक से तो ये काम नहीं होता, चुंबक से तो एक काम होता है वो लोहे को खींचता है, लेकिन लोहे को शुद्ध तो नहीं करेगा, अगर शुद्ध नहीं लोहा तो वो बिल्कुल दूर रहेगा चुंबक उसको बिल्कुल नहीं। लेकिन कृष्ण नाम अगर आप फिर भी बलपूर्वक अगर करते हैं तो वो रगड़ रगड़ करके ये चुंबक क्या करता है, लोहे को शुद्ध करता है, फिर आकर्षित करता है, है ना। तो ये जो है मतलब ये है ना। आगे प्रभुपाद जो इसमें हमने चर्चा की है आगे क्या है, श्रील प्रभुपाद ने जो संकीर्तन आंदोलन को संपूर्ण विश्व में फैलाया उसका नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद ने जब नाम रखा तो पता कहाँ पर ये स्थापना की थी, इस संस्था की न्यूयॉर्क में स्थापना की थी। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, तो विदेश में एक ही नाम ऐसा है, एक ही शब्द ऐसा है जो कि कोई नहीं जानता, भाग्य शब्द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉन्शसनेस सब लोग जानते हैं, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं जानता। तो वहाँ के कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कृष्ण को तो कोई जानता नहीं है, तो आप जो है कुछ ऐसा शब्द इसमें डालिए जो कि सब लोग समझ जाएं कि भाई क्या है ये कृष्णा कॉन्शसनेस, क्या मतलब होता है ये कृष्णा, क्या चीज़ होती है। तो लोग कहेंगे भाई कृष्णा क्या चीज़ है, सोसाइटी का नाम आपने ऐसा रखा कि इसमें फिर लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, ये कृष्ण क्या चीज़ है ना। तो प्रभुपाद से उनको सुझाव दिया आप रखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस, तो लोग समझ जाएंगे। अच्छा विचार है नहीं, अच्छा विचार है नहीं, क्यों क्या ठीक कह रहे हैं, गॉड कॉन्शसनेस, हाँ ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है इतना पाखंड चल रहा है, कोई कहता है आई एम गॉड, कोई कहता है यू आर गॉड, कोई कहता है वी ऑल आर गॉड, है ना, या कोई कहते हैं हाँ, कोई कहता है लव इज गॉड, है ना, और कोई कहता है गॉड इज लाइट। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस से कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभुपाद ने जो विचार किया वो दूसरा था, एक दूसरा विचार था। प्रभुपाद ने क्या विचार किया कि गॉड शब्द जो है इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कृष्ण शब्द शक्तिशाली है, इस शब्द में बहुत शक्ति है। ये कृष्ण का जो नाम है ये मतलब क्या है, पूर्ण रूप से इसमें कृष्ण की शक्ति भरी पूर्ण, और कोई व्यक्ति जो है नहीं भी जानता है कि क्या कृष्ण शब्द क्या चीज होती है, और कृष्ण शब्द अगर बोलता है वो उसके मुख से निकलता है तो इसमें उसकी बहुत बड़ी जो है शक्ति है, प्रभाव उसका जो है शुद्धिकरण, बहुत ज्यादा शुद्धिकरण है ना। यहाँ तक कि देवानंद ने जो है जो अभिनेता थे उन्होंने फिल्म बनाई थी उसका नाम रखा था हरे कृष्णा हरे राम, है ना। तो उस समय सन कौन सा सन था, सन 65 66 वही सन था, हरे कृष्णा हरे राम फिल्म चल रही थी काफ़ी, है ना, और उसमें गाना भी था दम मारो दम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम गाते थे, है ना। और उस समय प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों को लेकर के भारत में भी आए, उस समय 67 में जब प्रभुपाद आए तो इन प्रभुपाद के शिष्यों को देख करके वो जो है चढ़ाते थे दम मारो दम मिट जाए गम तो प्रभुपाद के शिष्य लोग जो है मतलब बड़े दुखी होते थे कि हम लोगों ने तो नशा छोड़ दिया है, और ये लोग जो है हम लोगों को ऐसा समझते हैं कि हम लोग नशा करते हैं और नशे में हम हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद से आके शिकायत की कि प्रभुपाद ये लोग जो है इस तरह से हम लोगों को समझते हैं, गलत समझते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं नहीं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी समझे कि उनके मुख से हरे कृष्ण हरे राम निकल रहा है कि उनको शुद्ध करेगा। ये जो है मतलब विचार है, ऐसे जो महान सूक्ष्मदर्शी विद्वान होते हैं प्रभुपाद जैसे वो विचार कर सकते हैं कि लोगों के मुख से जो है ये कृष्ण का नाम निकल रहा है, ये हमारी इसमें सफलता है, हमारा जो कार्य है इसमें सफल हो रहा है ना। तो ये जो है मतलब बात है, और ये जो है उनका अपराध नहीं हो रहा है उससे, क्योंकि वे लोग अज्ञान में ऐसे बोल रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम, है ना, तो इसमें अपराध नहीं हो रहा, नाम का अपराध नहीं हो रहा है, है ना। ये नामाभास में बड़ी शक्ति है, कृष्ण उनके मुख से कृष्ण निकल रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ने जो है मतलब ये फिर ये कहा परंतु श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर ही जोर दिया कि संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ ही होना चाहिए है? तब जब उन्होंने कहा कि प्रभुपाद इसको कृष्ण को तो कोई समझेगी नहीं, कहीं मान लो लिखा हुआ है या कहीं सुनाई देता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, तो लोग सोचेंगे क्या है, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब लोग सोचेंगे कि कृष्ण क्या है, इससे भी उनके दिमाग में जो है शुद्धि होगी, कि उनके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि कृष्ण क्या है, है ना। और फिर हमारे जो मेंबर्स हैं मतलब भक्त हैं, तो उनका यही काम है कि वे बताएं कि कृष्ण कौन है, उनका ये काम है। इसलिए सबसे पहले लोगों को जो है ये कृष्ण का नाम अगर मिल जाए तो ये उनका जो है क्या करेगा, शुभ करेगा, मंगल करेगा और उनकी मुक्ति का रास्ता खोल देगा, है ना। तो कृष्ण नाम में दे सकती है ना। आगे लिखा है श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि वे अपने शत्रुओं को भी आकर्षित करते हैं। इस प्रकार की एक घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, जिस समय श्री कृष्ण मथुरा में कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के भावों में देखकर आकर्षण का अनुभव किया। कृष्ण कंस की रंगशाला में प्रवेश जब करते हैं, किस समय की घटना है, जब कृष्ण मथुरा में आए, है ना। तो कृष्ण बलदेव जी दोनों कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं, है ना। तो इसमें 10 प्रकार के रसों में हमने चर्चा की है, बहुत ही रोचक है, सब तो नहीं लेकिन एक तो मैं चर्चा करूंगा। रौद्र रस में कंस की रंगशाला के 5 मुख्य पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल। ये 5 क्या थे, पहलवान थे, है ना। और इन पहलवानों को कंस ने अपने कार्य में लगाया हुआ था। और क्या था इनका कार्य, कि कंस जिसको मारना चाहता है भाई, किसको, किसी उसको पता चल गया कि भाई ये मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, उस व्यक्ति को मारना है, तो कंस का जो है ये हिसाब था कि वो उस व्यक्ति को कुछ नहीं बताएगा कि तुमने क्या गलती की है और तुमको ये दंड दिया जा रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। और उसको जो है कंस बुलाएगा अपनी सभा में, और जो ये मल्ल हैं वो कहेंगे कि हमारे राजा की आज्ञा है कि तुम हमसे कुश्ती लड़ो, और कुश्ती उसको लड़ना पड़ेगा, और कुश्ती में जो है उसको मार डालेंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। कंस की यह नीति थी, है ना। ये हुआ भी, कृष्ण बलराम के सामने जब कृष्ण बलराम आए सभा में, तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण बलराम को कहा कि आइए हमसे आप कुश्ती लड़िए। कृष्ण बलराम बोले कि देखो हम लोग जो है अपने छोटी उम्र के हैं, तो ये तो शोभा नहीं देता कि आप बड़ी उम्र के लोग हैं, पहलवान हैं, और हमारे साथ आप जो है लड़ रहे हैं, ये तो चल नहीं है। नहीं नहीं, राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा ही हमारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा है, तो ये तो कपटी थे, ये तो बड़े कपटी थे कि भाई राजा की आज्ञा है, राजा को प्रसन्न करने के लिए हम कुश्ती लड़ेंगे, लेकिन इरादा क्या है, कृष्ण बलराम को मार डालना है। और कृष्ण बलराम, उनको पता नहीं कृष्ण बलराम और बड़े कपटी हैं, कपटियों के कपटी तो वो है, वो बहुत बड़े कपटी हैं, है ना। तो हुआ क्या, जब देखा इन लोगों ने, इन्हें कंस ने समझा दिया था कि कृष्ण बलराम के साथ कुश्ती लड़ने का बहाना करके कपट पूर्वक दोनों भाइयों की हत्या कर देना। परंतु जिस समय ये दोनों भाई उनके सामने पहुंचे, तो इन पहलवानों को ऐसे दिखाई दिए मानो इनके शरीर वज्र के बने हों। क्योंकि पहलवान पत्थर जैसे शरीर वाले थे, और इन्होंने सोचा था कृष्ण बलराम के फूल जैसे शरीर को आसानी से मसल डालेंगे। कृष्ण बलराम का शरीर तो फूल जैसा सब लोग बताते हैं और सुना भी, लेकिन अभी तो उल्टा दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण बलराम फूल जैसे नहीं दिखाई दे रहे, वज्र जैसे। परंतु आश्चर्य, कृष्ण बलराम के शरीर वज्र के समान सुदृढ़ थे, चाहे छोटे शरीर क्यों ना हो, ये छोटा सा वज्र होता है और बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर देता है, है ना। वही पर्वत की तरह पत्थर का शरीर और छोटे छोटे ये शरीर, लेकिन वज्र की तरह कोई मुकाबला ही नहीं पत्थर का वज्र के सामने। वज्र के सामने जब पत्थर टकराते हैं तो वज्र की कोई हानि नहीं होती, परंतु पत्थर चूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार इन पहलवानों ने श्री कृष्ण के प्रति रौद्र रस में आकर्षण का अनुभव किया, आकर्षित हुए कि कोई शेर का सवा शेर मिला आज पहली बार, तो आकर्षण होता ना, तो आकर्षण कृष्ण आकर्षित करते हैं, है ना। इसी प्रकार से दूसरा अद्भुत रस में है, फिर श्रृंगार रस में, फिर हास्य रस में, फिर वीर रस में, फिर करुण रस में, फिर भयानक रस में, फिर बीभत्स रस में, फिर शांत रस में, फिर दास रस में, इस तरह से इसमें जो है चर्चा होती है। तो काफ़ी इसमें जो है विस्तार से, क्योंकि मैं जब मैंने पढ़ा तो मुझे बिल्कुल नया जैसे लगा कि कितना मतलब अद्भुत लिखा है। अभी मेरी शक्ति नहीं लिखने की, ये तो कृष्ण ने और प्रभुपाद ने शक्ति दी थी। लेकिन अगले श्लोक की व्याख्या में ये जो दो बातें हैं इनकी चर्चा कुछ विशेष हुई है। तो पहला है अर्जुन के लक्षण, सीदंति मम गात्राणि। सीदंति मम गात्राणि का मतलब है मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, है ना। ये अर्जुन के शोक का पहला लक्षण है। यद्यपि शीला प्रभुपाद ने यहाँ सीदंति शब्द का अर्थ कांप रहे हैं किया है, परंतु फिर तीसरे लक्षण में वेपथु शब्द आया है जिसका भी अर्थ कंपन है। अगले श्लोक में वेपथुश्चा शरीर में कंपन। अतः प्रथम लक्षण में सीदंति शब्द का अर्थ सामान्य कंपन होना चाहिए, सामान्य कंपन। आगे चल करके फिर और जो शोक के लक्षण प्रकट हुए ना अर्जुन के शरीर में, तो वेपथुश्चा शरीर में, तो यहाँ पर सामान्य कंपन है। अंगों में सामान्य कंपन क्यों होता है? जिस समय शरीर में कमजोरी आती है या शिथिलता आती है, उस समय शरीर में सामान्य रूप से कंपन होता है, इसी शरीर के अंगों का शिथिल होना ही पहला लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण की अनुभूति कभी कभी हमें भी होती है, जिसमें भूख के कारण हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, उस समय हमारे शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी कार्य को करने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। तो अर्जुन के शोक की सामान्य स्थिति है, शरीर के मुख्य अंग जिनके द्वारा कार्य किया जाता है ये दो हाथ और दो पैर हैं, है ना। तो जो कांप रहे हैं अर्जुन के शरीर में अंग, वो कौन से अंग हैं? दो हाथ और दो पैर हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में जब ये विचार आया कि वे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं तो उनके हाथ और पैर कांपने लगे, है ना। ये गुण है, पाप से डरना ये गुण है, है ना। और जो असुर लोग होते हैं तो वे पाप से नहीं डरते, है ना। फिर दूसरा क्या है? मुखम चा परिशुष्यति, मुख सूखा जा रहा है। ये अर्जुन के सुख का दूसरा लक्षण है। शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन पाप कर्मों से ही सबसे अधिक भयभीत हैं। यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह परिशुष्यति, इस शब्द में सुष्यति का अर्थ है सूख रहा है और परि का अर्थ है चारों ओर से। इस प्रकार परिशुष्यति का अर्थ हुआ चारों ओर से सूख रहा है, परंतु मुख के संबंध में इसका अर्थ हुआ कि अंदर से भी सूख रहा है तथा बाहर से भी सूख रहा है। परि, परि का मतलब चारों ओर से, मुख चारों ओर से सूख रहा है मतलब अंदर से भी सूख रहा है और बाहर से भी सूख रहा है। अर्जुन का मुख अंदर से सूख रहा है इसका अर्थ हुआ कि उनके तालु और कंठ सूख रहे हैं, तालु और कंठ अंदर हैं। और अर्जुन का मुख बाहर से सूख रहा है इसका अर्थ हुआ उनके ओठ सूख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मालूम पड़ता है कि अर्जुन अपने को ऐसी स्थिति में समझ रहे हैं जिसमें वे पूर्णतया पाप कर्म से बंध गए और इस पाप से छूटना उन्हें कठिन दिखाई दे रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि अर्जुन के हृदय में शोक की अग्नि इतनी प्रबल है कि उनके ओठ तालु और कंठ सभी सूखे जा रहे हैं, है ना। तो ये जो है मतलब हमने कुछ चर्चा की इस विषय में, अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, अर्जुन ने सबसे पहले जो शब्द बोले वो थे कि इन सज्जनों को देखकर, इन सज्जनों को देखकर, है ना। अब क्या देखकर इसको कहने के पहले अर्जुन ने क्या बोला? कृष्ण, है ना, कृष्ण। क्यों कृष्ण क्यों बोला, कौन बताएगा? अप्रिय, अप्रिय समाचार बताने से पहले अर्जुन ने कृष्ण नाम का प्रयोग किया। बहुत ही अप्रिय बात है ना। इसका मतलब यह है कि अप्रिय बात अगर कोई हो तो कृष्ण बोलना चाहिए, ठीक है ना, रक्षा के लिए हर समय कृष्ण बोलना चाहिए, चाहे प्रिय समाचार हो चाहे अप्रिय समाचार हो, है तो कृष्ण नाम जो है रक्षा करेगा, है ना। तो कृष्ण नाम से बड़ी रक्षा होती है। तो अर्जुन के स्वभाव में ये जो है कृष्ण का नाम है, तो ये हमें जो है लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, है ना। तो अर्जुन ने जब कहा कृष्ण, इसके बाद अगला शब्द क्या है, अगला शब्द क्या है, अर्जुन ने क्या बोला, कृष्ण नाम बोल करके फिर क्या बोला, युत्सुम, युत्सुम, युत्सुम का मतलब युद्ध की इच्छा वाले, मतलब कौन युद्ध की इच्छा वाले हैं, कौरव लोग युद्ध की इच्छा करने वाले हैं। तो ये क्या है, बहुत अप्रिय बात है, बहुत अप्रिय बात है, अपने ही जो है कुटुंबी लोग हैं, हाँ युद्ध करना चाहते हैं, तो बड़ी अप्रिय की बात, बड़ी अप्रिय बात है। क्यों अप्रिय है, क्योंकि ये मारे जाएंगे, है ना। तो बहुत अप्रिय बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा अप्रिय बात अगले शब्द, अगला शब्द क्या है, समुपस्थितम, मतलब हाँ सम उपस्थितम, बिल्कुल सामने ही आ गए, तो और ज्यादा प्रिय। एक तो युद्ध की इच्छा कर रहे हैं, है गलत, बहुत गलत बात, इससे भी ज्यादा गलत बात सामने आ गए हैं, बहुत गलत बात है ना। तो अर्जुन ने इस प्रकार से चर्चा की, है ना। और सीदंती मम गात्राणी, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, है ना। तो शरीर के अंग कौन कौन से हैं, यहाँ पर दो हाथ दो पैर, है ना, ये कांप रहे हैं, है ना। यहाँ पर कांपना किस प्रकार का कांपना है, किस प्रकार का कांपना है, जैसे कोई उदाहरण, भूख में, हाँ तो हाथ पैरों में जो है कुछ कंपन होता है, है ना, चलने में, है ना, खाने में, हाथ में जो है कमजोरी आती ना, शिथिलता, तो वो जो है मतलब सामान्य बात है। सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशोष्यति, और मुख जो है चारों से सूख रहा है, मुख चारों से सूख रहा है, है ना। अब देखिए ये जो जब मैंने शब्दार्थ में पढ़ा था मुखम चा परिशोष्यति कि मुख सूख रहा है, तो उस समय मेरे पास पानी आया और मुझे याद आया मुझे पानी पीना है, है ना। ये जो है मतलब ऐसी लीलाएं बहुत सी होती हैं भगवान की, ऐसी बहुत सी लीलाएं होती हैं। कल हम गए थे हैदराबाद, है ना, तो हैदराबाद में जो है मैं वहाँ कुछ सुना रहा था, कथा सुना रहा था, तो उस कथा में ये चर्चा आई थी कि तुलसी के वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं, तुलसी के वृक्ष से गिरे हुए पत्ते भी जो है भगवान की सेवा में लगाए जाते हैं, भगवान को भोग लगाए जाते हैं। तो ये जब बात आई तो मेरे साथ में प्रदुम प्रिया प्रभु हैं, तो ये गए थे मेरे साथ में तो उस समय क्या हुआ, मतलब कितना आश्चर्य है, मतलब आपको बता रहे हैं कि भगवान की लीला कैसे होती है, कथा में जो है ऐसी शक्ति है कि ऐसी घटनाएं होती हैं इस तरह की। तो जिस समय मैंने पढ़ा कि तुलसी जब वो तो मतलब कथा में जैसी बात आई मैं वैसे पढ़ता जा रहा था, तो उसमें जब ये बात आई कि तुलसी के वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं तो गिरे हुए पत्तों को भी भगवान के भोग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, है ना। तो अब इनके साथ क्या हुआ वो तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ये बैठे बैठे इनको नींद आ गई थी, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे तो कथा में फिर नींद आएगी, तो इनको बैठे बैठे नींद आ गई थी। और स्वप्न में इन्होंने क्या देखा कि हमारे मंदिर में जो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर है वहाँ जो है तुलसी का गार्डन है, जहाँ तुलसी तुलसी है, तो वहाँ तुलसी के गार्डन में तुलसी से जो है जो पीले पीले पत्ते जो पक गए ना वो झड़ रहे हैं, हरिओ हरिओ, और तुरंत जो है इनकी आंख खुली, क्योंकि बैठे बैठे कोई व्यक्ति सोता है तो गिरने लगता है, और जैसे गिरने लगता है तो वो फिर समझ जाता है, तो उसकी निद्रा भंग हो जाती है। तो इनकी निद्रा भंग हुई तब इन्होंने सुना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे आश्चर्य बहुत से होते हैं। एक बार जो है सीता नवमी का दिन था, तो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में सीता नवमी के दिन मैं सीता महारानी की कथा सुना रहा था। तो उसमें मैंने पद्म पुराण से पढ़ के सुनाया। तो सीता महारानी जो है 6 वर्ष की छोटी अवस्था की, है ना, और अपने मिथिला में जो है अपने बगीचे में आई, और उन्होंने देखा कि तोता और मैना का एक जोड़ा है जो सीताराम की चर्चा कर रहे हैं। वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उन्होंने जो है रामायण सुनी थी, तो यहाँ से सीताराम की चर्चा कर रहे हैं। तो उनको भी पता नहीं कि जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो सीता महारानी तो यही हैं। तो वो सीताराम की चर्चा कर रहे हैं, तो सीता जी ने जो है अपनी सखियों को कहा कि ये तो जो है मतलब मेरी चर्चा कर रहे हैं, तो इनको तो किसी प्रकार से इनको पकड़ना है, क्योंकि मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, कोमल व्यवहार करना चाहती हूँ, लेकिन इनको पहले तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। तो सीता महारानी ने आज्ञा दी कि इनको, और उनके सखियों ने उनको जो है किसी प्रकार से पकड़ लिया। फिर तो सीता महारानी बातचीत करती हैं कि तुम लोग कौन हो, सीताराम कौन है, सीता कौन है, राम कौन है, ये मुझे बताओ। तो वो बता रहे हैं, तो आगे मतलब कथा तो काफ़ी लंबी है। तो मैं ये बता रहा था कि जब मैंने ये बताया कि सीता जी की सखियों ने उन तोता मैना के जोड़े को पकड़ लिया, तो उस समय एक बड़ी आश्चर्य की घटना हुई। वो क्या हुआ कि मैं जहाँ मतलब बैठा था व्यासन पर, तो व्यासन के पीछे जो है दरवाज़ा था, वो दरवाजे में एक पर्दा लगा था, और पर्दा जो लटक रहा था तो उसमें जो है एक सुतली थी, रस्सी जो भी हो, हाँ, तो वो जो है वहीं पर एक पक्षी मतलब चिड़िया बैठी थी। तो वो जो है अपने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके ढूंढ रही थी, कुछ रस्सी का टुकड़ा हो, कुछ तिनका हो, वो ढूंढ रही थी। तो उसने अपनी चोंच में वो रस्सी जो है दबाई, उसने सोचा कि वो टुकड़ा है रस्सी का, तो वो जो है दबा करके और उड़ करके जाने लगी। उसको पता नहीं था कि वो रस्सी तो बंधी है पर्दे से, वो टुकड़ा नहीं है। तो हुआ क्या कि जैसे वो उड़ी, है ना, तो फिर उसके उड़ने में बाधा पड़ी, क्योंकि वो रस्सी का टुकड़ा तो था नहीं कि वो उड़ जाए। तो उसी समय वो मतलब दृश्य उपस्थित हो गया, क्या कि उसको महसूस हुआ कि उसको किसी ने पकड़ लिया फिर वो छोड़ करके उड़ गई। लेकिन ठीक उसी समय मतलब ये घटना घटी, है ना। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो प्रथम प्रिया प्रभु कुछ बताएंगे,
तीन फेस्टिवल में तीनों बार एक एक घटना।
ये माइक हैंड माइक नहीं है, ठीक ठीक।
तो इससे पहले गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था, और प्रभु जी दोपहर में कथा कर रहे थे महाप्रभु। तो जब ये वर्णन पढ़ा प्रभु जी ने कि जगन्नाथ मिश्र एक जो ब्राह्मण आते हैं घर में जगन्नाथ मिश्र जी के, और उनका जो है भोग जो है निमाई जो छोटे बच्चे थे महाप्रभु, वो जब भी भगवान लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते तभी वो खा जाते।
वो ब्राह्मण जो है, हाँ, वो अपने मतलब भगवान को भोग लगा रहा है, तो निमाई बालक जो है बार बार उस भोग को जूठा कर देता है।
तो उस वक्त जो है आप लोग के जो पिता थे जगन्नाथ मिश्र जी, उन्होंने कहा कि चंचल निमाई को जो है दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दो। तो उस वक्त बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी, जहाँ प्रभु जी का व्यासासन था उसी के पास में दो छोटी छोटी बच्ची कृष्ण के एक टेडी बियर ऐसे, तो वो लेके वो बहुत छोटे से लगते हैं, बहुत प्यारे हैं। तो उसी वक्त प्रभु जी के व्यासासन से गई और पीछे की साइड निकल गई, तो बड़ा आश्चर्य लगा उस पर कि कभी ऐसे बच्चे नहीं आते, इतनी भीड़ है वो पीछे से आके और ऐसे चली गई। तो ऐसी घटना घटी।
मतलब ये बता रहे हैं कि जब मैंने वो पढ़ा कथा पढ़ी, तो उसमें जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि चंचल बालक को दूसरे कमरे में ले जाओ,
इस चंचल बालक को दूसरे कमरे में ले जाओ, क्योंकि ये बार बार ये हमारे अतिथि ब्राह्मण का जो है भोग जूठा कर रहा है। इस चंचल बालक को दूसरे कमरे में ले जाओ, है ना। तो उसी समय वो जो कृष्ण का जो था ना, मतलब क्या बोलते हैं, वो फोम का जो है,
टेडी बियर,
तो फोम कृष्ण की जो मूर्ति थी फोम की, तो उसको गोद में लेकर के वो छोटी सी लड़की जो है उसी समय निकली वहां से। तो मतलब वो बिल्कुल मंचन हो गया उस घटना का, उसी तरह से ऐसा मैंने देखा, ये तो दृश्य मैंने देखा अपनी आंखों से। तो मतलब ऐसी भगवान की मतलब घटनाएं हैं, घटनाएं ऐसी मतलब घटित करते हैं भगवान कथा के समय।
तीन बार ऐसी घटना घटी लगातार फेस्टिवल था। उसके बाद सीता महारानी का तो पता है, इससे पहले राम जी का आया था, तो उस वक्त जो है कथा जो प्रभु जी पढ़ रहे थे तो उसमें राम जी का वर्णन था कि जैसे जन्म हुआ होगा तो देवता लोग फूल बरसाए, फिर भरत जी का इस तरह। तो उस दिन जो पक्षी विशेष तौर पर जो इतने सारे फूल गिरा रहे थे जो ऊपर लग रहे थे बहुत सारे, और व्यास आसन के पास ही, तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था। और फिर जब सीता जी का देखा अगली बार एक महीने बाद उनका भी जन्मदिन आता राम जी के बाद, तो फिर और आश्चर्य हुए कि तीन बार से लगातार क्या दिव्य लीला है और ये भगवान की इस तरह की घटना करती है। कृष्णा कृष्णा का भी है वो, कभी कृष्णा कृष्णा के ऊपर प्रभु जी एक बार आठवें अध्याय कोई श्लोक को प्रवचन कर रहे हैं, तो उसमें गुंडीचा मंदिर का भी वर्णन आया था और प्रभु जी बता रहे थे कि वहाँ प्रभु ने सिखाया है कृष्णा कृष्णा बोलना, ये कृष्णा कृष्णा बोल के ही सब कार्य करना चाहिए। तो प्रभु जी अपनी तरफ से बता रहे थे कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं कि कृष्णा कृष्णा बोल के कर सकते हैं, जो कि व्यवहार में अगर करा जाए रूटीन में बना दिया जाए कि ये काम कृष्णा कृष्णा बोल के ही करना है तो किया जा सकता है। तो कृष्णा कृष्णा बोल कर किया जा सकता है, जब भी प्रभु ने कृष्णा कृष्णा बोला उस व्यक्ति एक मोबाइल से मंदिर के प्रांगण में घूम निकली, कृष्णा 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 कृष्णा, दो बार कृष्णा था फिर उसका नजर लगा था। फिर 10-15 साल पहले बहुत लोग अपने मोबाइल में भी लगाते थे, अब दोबारा लगाने लगे हैं थोड़े लोग, तो बीच में पूरा बंद था, उसी दिन निकला इतना ज्यादा दूर था। तो आश्चर्य हुआ कि एकदम जैसे ही प्रभु जी ने कृष्णा कृष्णा बोला तो उधर से भी कृष्णा कृष्णा की धुन निकली, बहुत आश्चर्य।
हाँ, ये जो है घटना मैंने अपने आँखों के सामने देखी, तो मैं ही प्रवचन दे रहा था, और जब मैंने मतलब ये बताया, क्योंकि ये श्लोक शायद सातवां था आठवें अध्याय का, इसमें लिखा हुआ है आठवें अध्याय का सातवें, हाँ, इसमें जो है भगवान कह रहे हैं ना कि मेरा स्मरण करो, तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है मनुष्य, उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है, मतलब हर काम में अपना, इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा। इसमें इस श्लोक के प्रवचन में फिर मैंने गुंडीचा महार्जन की कथा बताई थी कि गुंडीचा महार्जन में लोग जो है केवल कृष्ण कृष्ण बोलते थे और सफाई में लगे थे और सैकड़ों लोग सफाई कर रहे थे, लेकिन कोई जो है कोई दूसरी बात नहीं बोल रहा था। उसको पानी का घड़ा मांगना है तो बोलता है कृष्णा कृष्णा है, और जो घड़ा दे रहा है पानी का वो कहता है कृष्णा कृष्णा है, तो वो ये और कुछ ये नहीं बोल रहा है कि तुम घड़ा लो, वो कहता है घड़ा दो, नहीं कृष्णा कृष्णा, केवल कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। तो जब मैंने ये बोला कि उस समय सब लोग कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे, उसी समय जो है मंदिर में जो है एक दर्शनार्थी है, मतलब कई दर्शनार्थी थे, तो किसी के मोबाइल में और बड़ी जोर से आवाज निकली वो कृष्णा कृष्णा का भजन,
15-20 सेकंड तक आवाज चलती रही। और उसके बाद मैंने ये सोचा था कि ये कहीं से कहां मिल जाए मतलब कृष्णा कृष्णा वाला, और काफी मैं क्लास में था तो किसी ने मुझको बताया कि इंटरनेट में हो सकता है। तो जिस दिन मैं उस दिन बाद ये फेस्टिवल आने वाला था गुंडीचा मंदिर का, तो मैं चाहता था कि मैं बताऊँ, हालांकि मैं बता नहीं पाया, तो इस गाने की खोज में था मैं, तो मैं सोच रहा था कैसे मिलेगा। तो जब मैं सोच रहा था उससे अगले दिन सुबह 4 बजे बाथरूम में कोई स्नान करने आया उसके मोबाइल से
ही,
तो मुझे लगा कि हम मिल जाएगा मुझको।
अब वो रिश्ते निकलना नहीं जरूर निकलना। अभी पंजाबी बाग में भी मैंने प्रवचन दिया था, तो उधर सातवां स्कंद चल रहा है श्रीमद् भागवत का, तो उसमें प्रहलाद महाराज की प्रार्थना चल रही है। चलिए किताब रख लो, ये घटना दिनांक 18 सितंबर 2014 की है, अभी तो ज्यादा दिन हुए। 18 सितंबर, इस दिन मेरा पंजाबी बाग में स्थित इस्कॉन मंदिर में प्रातःकालीन प्रवचन हुआ था। चूंकि प्रवचन श्रीमद् भागवत के एक ऐसे श्लोक पर हुआ था जिसमें बालक प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात नृसिंह देव के प्रति अपनी सच्ची प्रार्थना अर्पित की है, अतः प्रवचन के अंत में मैंने इसी पुस्तक में से वो लीला पढ़कर सुनाई जिसमें दिनांक 30 जून 2014 को मेरे सामने हिरण्यकश्यपु के अभिनय का मंचन हुआ था। उस समय जैसे मैंने इस पुस्तक में से पढ़कर के ये शब्द बोले, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को चुनौती दी कि यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैं जिस व्यासन के ऊपर बैठा हुआ था उसी के निकट से एक 5 वर्ष का बालक इस प्रकार निकल कर चला गया मानो बालक प्रहलाद का निर्दोष रूप ही प्रकट हो गया हो। समझ रहे? हरि बोल, हरि बोल। जिस समय मैंने वो पढ़ के सुना, हिरण्यकश्यपु बोल रहा है यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है, डांट करके बोल रहा है। उसी समय 5 वर्ष का बालक, और कभी नहीं ऐसे आया व्यासन के पास से, कभी नहीं आया, उस समय निकल करके चला गया। उस समय सभी भक्तगण मेरी कथा सुनने में तल्लीन होने के कारण बालक प्रहलाद के इस दृश्य पर ध्यान नहीं दे सके, परंतु प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा। प्रवचन के बाद जब मुझे और मेरे संगियों को कथा के समय ऐसी घटना का पता चला, उस समय श्री कृष्ण की व्यवस्था से ही ऐसे दृश्य का प्राकट्य जानकर अत्यंत विस्मित और बारंबार हर्षित हुए। यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि दिनांक 30 जून 2014 की घटना में जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु के अभिनय का मंचन हुआ था, उसी प्रकार आज की घटना में बालक प्रहलाद के दृश्य का मंचन हुआ। अब इसमें क्या है कि 30 जून को भी ये जो घटना हुई थी उस समय सवेरे 9 बजे 9:30 बजे, हाँ करीब 9:30 बजे की बात है, प्रसादम हॉल में मैं प्रसाद ले रहा था, तो मैं प्रसाद ले चुका था तो मुझे उठना था, लेकिन मैं उठा नहीं क्योंकि प्रसाद के समय दिव्यांबर प्रभु प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के सुनाते हैं, तो बड़े मधुर स्वर में प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के सुनाते हैं, तो मैं जो है प्रसाद मैंने पूरा ले लिया था लेकिन मैं उठा नहीं, मैं बैठा ही रहा क्योंकि वो बहुत मधुर कथा चल रही थी तो मैं बैठा सुन रहा था। बाकी लोग कुछ नहीं सुन रहे थे, वो अपने खाने में लगे हैं, अपनी दूसरी बातों में कुछ सोच रहे हैं, तो कोई नहीं सुन रहा, मैं सुन रहा था। अच्छा उस समय क्या हुआ कि हरि सुंदर प्रभु जो है प्रसाद लेकर के उठे और वहाँ से निकल रहे थे, तो जिस समय ये बात आई मतलब उसने हिरण्यकश्यपु ने जब ये कहा प्रहलाद से कि तेरा भगवान का सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं प्रकट होता, ये कहकर के हिरण्यकश्यपु ने खंभे में घूसा मारा, उसी समय मैंने देखा कि हरि सुंदर वहां से गुजर रहे थे प्रसाद लेकर के और ऐसी मुट्ठी करके और खंभे में ऐसे किया खंभे में ऐसी मारी मुट्ठी चलाई। अच्छा अब ये उनको भी पता नहीं कि उन्होंने क्यों किया और क्या किया है, उसे कुछ होश नहीं, हरिश्चंद्र कुछ पता नहीं, लेकिन मैं चूंकि कथा सुन रहा था तो मैंने देखा कि देखो बिल्कुल वो घटना का मंचन हुआ, हिरण्यकश्यपु अभिनय का मंचन हुआ। तो देखिए इसी बात पर जो है दो बार इसी तरह का दृश्य, एक तो हिरण्यकश्यपु का दृश्य प्रकट हुआ इसी बात पर, और इस दिन जो है पंजाब बाग मंदिर में जो है प्रहलाद का दृश्य प्रकट हुआ। अच्छा फिर है प्रवचन के अंत में श्लोक के अनुवाद के विषय में कुछ चर्चा हुई। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई जिस समय पंजाबी बाग मंदिर में प्रवचन देकर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर इस शुभ कैलाश वाले अपने मंदिर की ओर आ रहा था, उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मेरी प्रशंसा करते हुए मुझसे कहा कि जिस श्लोक पर मैंने आज प्रवचन दिया उस श्लोक के अनुवाद में इतनी बातें स्पष्ट नहीं हुई जितनी बातें मैंने अपने प्रवचन में स्पष्ट की थी। तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की इस बात के उत्तर में मैंने कहा कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो अनुवाद कार्य हुआ है उसमें कोई कमी नहीं है, यदि अनुवाद में कोई कमी है तो वो हिंदी भाषा में त्रुटिपूर्ण अनुवाद के कारण है। मैंने ये बात बताई, इतनी बात तो रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे हुई। अब जिस समय मैं अपने मंदिर में आया तथा अपने कमरे में प्रविष्ट हुआ, ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जैसे ही प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने अपने मोबाइल को चालू किया, उसमें मेरे अनेक प्रवचन भरे हुए थे। उसमें से मेरे प्रवचन का वो हिस्सा निकला जिसमें मैंने कहा कि कई लोग शिकायत करते हैं कि श्रील प्रभुपाद के श्लोकों का अनुवाद संस्कृत के शब्दों के अनुसार नहीं हुआ है, परंतु वास्तव में तो प्रत्येक श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद ने उस श्लोक का भाव इस प्रकार प्रकट किया है कि उसको श्लोक अनुवाद न कहकर हम उसे श्लोक का छोटा सा तात्पर्य कह सकते हैं। अब देखिए कि कितने आश्चर्य की बात है कि गाड़ी में जिस विषय पर मेरी और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के बीच में चर्चा हुई थी, उसी विषय पर कुछ अन्य बात भी थी जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। वो बात कुछ समय के बाद मोबाइल के अंदर से मेरे प्रवचन में निकली। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा हर्षित हुए। तो देखिए ऐसे मतलब आश्चर्य होते हैं, कथा के साथ साथ घटनाएं होती हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।